अनेक दिनों से अपनी यहाँ चर्चा नव तत्व के संदर्भ में चल रही है। जीव अजीव आश्रव बंद संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व हैं। और इन्हीं सात में जब पुण्य और पाप को और जोड़ दिया जाता है तो वे सात तत्व नौ पदार्थ कहलाते हैं। वे सात की जगह नौ तत्व कहलाए जाने लगते हैं। तो सात कहें या नौ कहें, एक ही बात है। पुण्य और पाप का अंतर्भाव आश्रव तत्व में ही हो जाता है। हमने यहाँ कल आश्रव और बंद तत्व के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा की है। क्या है ये आश्रव तत्व? छोड़ने योग्य है, दुख रूप है। हमें जो कष्ट है, हमें जो पीड़ा है, जो भी तकलीफ हम भुगत रहे हैं, उस तकलीफ का मूल कारण यदि कोई है तो उसका नाम है आश्रव। दुख का एकमात्र कारण आश्रव है। आश्रव के अलावा और कोई दुख नहीं है। हमारे राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणामों को आश्रव कहते हैं। आश्रव क्या चीज है? हमारे काम क्रोध आदि परिणाम है, विकारी भाव है हमारे। हमारे जो विकृत परिणाम है वे विकृत परिणाम ही आश्रव है। उन आश्रव भावों का जन्म कैसे हुआ? तो कहा, जब हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना और पर के साथ में जुड़ान किया, पर का अवलंबन लिया, पर का लक्ष्य किया, तो खड़े हो गए आश्रव भाव, राग द्वेष खड़े हो गए। भाई पर को देखेगा तो दो ही काम होंगे, या तो वो पर अच्छा लगेगा या वो पर बुरा लगेगा। आपने देखा ना पर को, दिखना अलग बात है और देखना अलग बात है। हम घर से यहां तक आए तो रास्ते में अनेक चीजें दिखी थी, लेकिन गाड़ी चलाते हुए देखने लग जाओ तो एक्सीडेंट है। माने देखने में जुड़ान है और दिखना वो सहज है। जीव ज्ञानवान है, जीव ज्ञान दर्शन से युक्त है। इसका मतलब जानन पना सहज हो रहा है, जानने देखने का काम सहज हो रहा है। हम जो भी जानते हैं उस जानने में ज्ञान की पर्याय है और सहज जानने में आता है। ये कभी जाने नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। जीव में ज्ञान नाम का गुण है तो प्रति समय जानने का काम तो हो रहा है, लेकिन जान करके अच्छा और बुरा जाना, इसका नाम है राग द्वेष, इसका नाम है आश्रव भाव। दो प्रकार के आश्रव भाव होते हैं, एक पुण्य आश्रव और एक पाप आश्रव। ये दोनों ही प्रकार के आश्रव भाव दुख रूप है। पाप को तो सारा जगत बुरा कहता है, पुण्य भी भला नहीं है। पाप और पुण्य ये दोनों सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। एक को छोड़कर दूसरा रहता नहीं है। आप यदि पुण्य को चाहेंगे तो पाप अपने आप साथ में आएगा। अब बोलो क्या करना? आप अकेले पुण्य को निमंत्रण दो और आप कहो कि नहीं नहीं, इनविटेशन सिर्फ पुण्य को है, पाप को नहीं है, बोले चिंता मत करो, हम तो जुड़वा हैं, अपने आप आ जाएगा। वो तो साथ में जुड़े हुए ही हैं, पुण्य के साथ में पाप लगा हुआ ही है। इसलिए पुण्य की चाह माने पाप, क्या कह रहा हूं मैं, बात खतरनाक है थोड़ी सी। पुण्य की चाह को अध्यात्म शास्त्रों में पाप कहा है। धर्म की चाह में जो पुण्य बंधता है वो पुण्य है, और पुण्य की चाह में पाप बंधता है। बात थोड़ी सी सूक्ष्म है। जो वितराग भाव को चाहते हैं, जो धर्म को चाहते हैं, उनके जीवन में पुण्य अपने आप बंधता है, और जो पुण्य को चाहते हैं पुण्य भी नहीं बंधता। हम लोग उदाहरण देते हैं ऐसा, कोई किसान खेती करता है, धान उगाता है, اچھی فصل ہوتی ہے تو پشوؤں کے لیے چارہ اپنے آپ ملتا ہے کہ نہیں؟ اناج یدی اگے گا تو اس کے ساتھ میں چارہ پشوؤں کے لیے وہ اپنے آپ ہوگا. لیکن کوئی کسان یہ سوچے کہ منشیوں کے لیے کھیتی تو سب کرتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ پشوؤں کے لیے چارہ اگاتا ہوں، تو وہ چارہ بھی اس کوالٹی کا نہیں اگے گا. دھانے کے ساتھ میں جس کوالٹی کا چارہ ہوگا نا، اس کوالٹی کا چارہ خالی چارہ اگانے میں نہیں اگتا ہے، گھاس پھوس اگتی ہے، تو کوالٹی نہیں آتی ہے اس میں. آپ کسے چاہ رہے ہیں، پنیہ کو چاہ رہے ہیں یا دھرم کا ابھیپرائے ہے؟ جو دھرم بدھی سے دھرم کرتے ہیں پنیہ اپنے آپ ہوتا ہے، لوکک انوکولتائیں انہیں اپنے آپ ملتی ہے. لوکک انوکولتاؤں کی چاہ مانے وشیوں کی چاہ. دھرم کرت سنسار سکھ اور دھرم کرت نروان اور دھرم پنت سادھے بنا نر چرینچ سمان. دھرم کرنے سے سنسار سکھ بھی ملتا ہے، دھرم کرنے سے نروان بھی ملتا ہے. دھرم کا واستوک پھل تو مکتی کی پراپتی ہے، دھرم کا واستوک پھل تو انت کال کے لیے اکشے انت سکھ کا اپبھوگ کرنا ہے. لیکن جب تک مکتی کی پراپتی نہ ہو اس کے ساتھ میں پنیہ بھی اپنے آپ بندھتا ہے. باہر میں انکولتائیں ملتی ہے، پریوار میں انکولتا ملتی ہے، سماج میں یش ہوتا ہے، پرتشٹھا ہوتی ہے، سمان ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں، شریر سوستھ رہتا ہے، گھر میں بچے کہنا مانتے ہیں، آگیا کے انوسار چلتے ہیں، نردیشن چلتا ہے، طبیعت ٹھیک رہتی ہے، انکول بھوجن ملتا ہے، کپڑے ملتے ہیں، گاڑی بنگلہ ملتا ہے، یہ سب پنیہ کے ادے میں ملتا ہے، سہج ہے یہ سب اپنے آپ. لیکن جو پنیہ چاہ رہا ہے، دن رات اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اسے پنیہ بھی نہیں ملتا. آپ جانتے ہیں سمیک درشٹی گیانیوں کو جیسا پنیہ بندھتا ہے، متھیا درشٹی جیو کتنا بھی زور لگا لے ویسا پنیہ اس کو بندھ ہی نہیں سکتا ہے. چکرورتیتو کا پنیہ، چکرورتیتو کا ویبھو کمانے سے آتا ہے، کہاں سے لاتا ہے ساتھ میں، کیسے آتا ہے وہ ساتھ میں؟ سمیک درشن کے ساتھ میں چکرورتی پد بندھتا ہے، سمیک درشن کے ساتھ میں اندر پد بندھتا ہے، سمیک درشن کے ساتھ میں نارائن ستی نارائن ایسی پدویاں، بلدیو ایسی پدویاں بندھتی ہے، شرشنکر جیسی پرکرتیاں یہ سمیک درشن کے ساتھ میں بندھتی ہیں. ایسا اتکرشت جاتی کا پنیہ بھید وگیان ہونے پر، سمیک درشن ہونے پر، آتمانوبھو ہونے پر، سچا دھرم جن کے جیون میں پرکٹ ہوتا ہے، یہ ساری پنیہ پرکرتیاں ان کے ارد گرد گھومتی ہیں. اور متھیا درشٹی جیو کتنی بھی کوشش کر لے اس کے جیون میں ایسا پنیہ بنتا ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں. کیونکہ پنیہ کے لیے بھی ہردے کی پوترتا چاہیے، سرلتا چاہیے. وشیوں کے پرتی آسکتی کرتے ہوئے دکان پر بیٹھے ہیں، باغ دوڑ کر رہے ہیں، مایا چاری کر رہے ہیں، ارے تم پنیہ کا پھل تو چاہتے ہو لیکن کرتے تو پاپ ہو، کیا ہوگا؟ بولو کیسے ہوگا؟ وہ پنیہ کا پھل کیسے ملے گا؟ کر تو پاپ رہے ہیں ہم نرنتر. بھائی صاحب ہمارے کمانے سے پیسہ نہیں آتا، یہ بہت بڑی بھول ہے کہ ہم کما رہے ہیں. دھرم کمایا جاتا ہے، پیسہ نہیں کمایا جاتا. آپ کو یدی کمانا ہے تو دھرم کماؤ، آپ کو یدی کمانا ہے تو اپنے اجول پرینام کماؤ، پیسہ نہیں کمایا جاتا. یہ پیسہ تو پھل ہے اس کا. جو پنیہ ہوا ہے، جو پوترتا ہوئی ہے، جو اندر میں وشدھی ہوئی ہے، اس وشدھی کا فل ہے پنیہ، اس وشدھی کا فل ہے پیسہ، اس وشدھی کا فل ہے ویبھو. ہم سوچ رہے ہیں ہم نے کما لیا، کیا بات کر رہے ہو، پوری زندگی لگا دی آپ نے کمانے میں، کتنا کمایا یہ بتاؤ، کتنا کمایا؟ صاحب 100 ملین سمجھ لو، کہ 100 بلین سمجھ لو آپ، ہے نا؟ کتنا کمایا ہم نے، کتنا سمے لگایا اتنا کمانے میں؟ 40 سال ہو گئے پنڈت جی، 40 سال لگے، لیکن آج میں نے اتنی پراپرٹی، اتنی سمپتی بنا لی. کہ اچھا آپ کے گھر میں ایک پوتے نے جنم لیا 2 دن بعد، بولو اب اس کو وہ بلینئر ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ कितने साल लगाए उसने, उसी क्षण हो गया वो। वाह, ये क्या हुआ? आपने जिसको कमाने में 40 साल लगा दिए, उसको वो कमाने में 40 मिनट भी नहीं लगे, उसने जन्म लिया और जन्म से ही वैभव उसका हो गया। ये क्या चक्कर है भाई साहब? ये कमाया नहीं जाता, कमाई कुछ और है, ये तो उसका फल है। हम सोच रहे हैं हम कमा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम लग रहे हैं इसमें, ये तो तुमने जो पहले कमाया था ना, जितना कमाया था उसका फल मिल रहा है। कितना बड़ा धोखा है बोलो, कितने भ्रम में जी रहे हैं हम। और कोशिश तो हर व्यक्ति करता है, मैं कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, फिर मिलता क्यों नहीं है? मिलेगा तो उतना ही जितना पहले पैकेज तय हुआ था, जितना पहले पैकेज तैयार किया था। एक बच्चा स्कूल में जाता है और देखता है जरा वहां आसपास में, अरे इसके टिफिन में गुलाब जामुन है और इसके टिफिन में ये है, इसके टिफिन में ये है, तो मेरे टिफिन में ये क्यों है? कि बेटा जो पैक किया था ना वही खुलेगा यहाँ। क्या ये टिफिन में वही चीज खुलती है जो चीज पहले से पैक की हुई होती है, उसमें चेंज नहीं होता। अरे ये बात ख्याल में, आपने क्या पैकिंग की है पहले, आप क्या पैक करके लेकर के आए हैं, जो चीज आप साथ में लेकर के आए हैं वही चीज खुलेगी, वही चीज निकलेगी, और कुछ नहीं हो सकता है। हम सोच रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, कई बार मेहनत करते करते भी कुछ नहीं होता है और कई बार कुछ भी नहीं करते हुए भी बरसता है। कभी कभी आप किसी को देख करके ये कहते हैं, अरे यार इसकी तो किस्मत ही जबरदस्त है, ये तो कुछ भी नहीं किया, इसको तो मुफ्त में ही मिल गया। मुफ्त में किसी को कुछ नहीं मिलता है, ध्यान रखना। क्या मुफ्त में किसी को कुछ? अरे पंडित जी सच कह रहा हूँ, मुफ्त में मिला है, कुछ नहीं किया था उसने, तो बस वहां से मॉल से निकला था तो निकलते निकलते कूपन डालाया था उसने बॉक्स में, और उस कूपन में पता है क्या निकला? ये जो बंगला दिख रहा है, ये बंगला इसको मुफ्त में मिल गया। उस कूपन जो डाला था ना, इसके लॉटरी खुल गई, इसको ये बंगला मिल गया। क्या किस्मत है, हजारों लोगों ने डाला था, इसको मुफ्त में मिल गया। भैया मुफ्त में नहीं मिला है, उसने उसके लिए जो पूर्व में पुण्य किया था वो पुण्य खर्च किया है। बिना पुण्य खर्च किए हुए संपत्ति नहीं मिलती, बिना पुण्य खर्च किए हुए वैभव नहीं मिलता। जो भी मिला है वो पुण्य खर्च करने से मिला है। आपको ये शरीर भी मिला है ना, तो ये पुण्य खर्च करने से मिला है। बिना खर्च के कोई चीज नहीं आती, और जितना खर्चा जैसा खर्चा वैसा वैभव। आप जितना खर्च करेंगे उतने महंगे गहने आएंगे, जितने खर्च करेंगे उतने महंगे कपड़े आएंगे, जितना खर्च करेंगे उतना अच्छा आएगा। ये शरीर कैसा मिला है? कि जितना पुण्य खर्च उतना शरीर, वैसा शरीर। जितना पुण्य खर्च उतना वैभव। तो ये पुण्य कहाँ से आता है? अब क्या हुआ, जब हमने ये कहा कि ये सब पुण्य से मिलता है, तबीयत ठीक रहती है वो पुण्य से रहती है, तो फिर एक काम करो कि पैसा कमाने की तरफ दिमाग मत लगाओ। आज आपने अच्छी बात बतला दी, पुण्य कमाने में दिमाग लगाना चाहिए, ये मोटा काम है थोड़ा ऐसा लगता है, तो पुण्य कमाने में लगते हैं। लेकिन भैया ध्यान रखना, जो पुण्य कमाने में लगते हैं उनको भी पुण्य अच्छी जाति का नहीं मिलता, क्योंकि वो आश्रव तत्व है, वो दुखकारी तत्व है, वो विरोधी तत्व है, पाप उसके साथ में बैठा हुआ है। चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों ही भाव बंधन के कारण हैं। बहुत सावधानी की बात है भाई, सावधान रहना। ये पुण्य में अटकने के चांस बहुत हैं, पुण्य भटकने के चांस बहुत हैं। तो आप में ये जीव अटकता नहीं है, कोई हत्यारा भी होगा ना, उसके हृदय में ये बार बार आवाज आएगी, यार ये अच्छा नहीं है, मैं काम ठीक नहीं कर रहा हूं। चोर भी होगा ना, और बहुत कुशल है, चतुर है, एक्सपर्ट है चोरी करने में, और तो भी वो अपने बच्चों को यही कहेगा कि बेटा चोरी नहीं करना कभी जीवन में। ये क्या हुआ, कभी पकड़ा नहीं गया, तू चोरी करता है, लेकिन बेटे को क्या कहता है, बेटा जीवन में कभी चोरी नहीं करना। क्यों क्यों नहीं करना? देखो पाप कितना भी करो आप, लेकिन हृदय के कोने से आवाज निकलती है ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन पुण्य करते हुए आपके अंदर से आवाज आती है, बहुत अच्छा यार आज तो सत्संग किया, मजा आ गया। देखो आप यहां संतुष्ट हो गई। खेत की पंक्तियां मैं भूल गया, कबीर जैसे किसी संत की पंक्तियां हैं, वाके मत ऊपर खिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी सा पाप की पल पल नाम रटाए। क्या कहा? उस पुण्य के ऊपर, उस पुण्य के बारे में कहते हैं वो, कोई हिंदू कवि है, मैं नाम भूल रहा हूँ, रहीमन तो नहीं, रहीम तो मुसलमान थे, लेकिन कबीर जैसे ही थे कोई, तुलसीदास जी जैसे समझ लो आप। क्या लिखा उन्होंने? मैं ये कहता हूँ कि उस पुण्य के माथे पर पत्थर पड़े, क्यों? नाम हृदय से जाए प्रभु का। और मैं उस पाप को धन्यवाद देता हूँ कि जिस पाप के उदय में आने पर, जिस पाप के साथ में रहने पर पल पल प्रभु का नाम स्मरण किया जाता है। बोलो कौन भला? जो आपको प्रभु का नाम स्मरण कराए वो भला, या जिसके होने पर प्रभु का नाम भूल जाओ वो भला? कौन भला है? विचार कीजिए आप, क्या लगता है आपको? ये पुण्य अटकाता है। देखो जितने लोग आज तक इस मार्ग में लगे हैं, बचपन से ही लगे हों उनकी तो बात अलग है, लेकिन कुछ एक एज के बाद में, 40-50 के बाद में कोई व्यक्ति यदि इधर टर्न हुआ है, तो उनमें 90% चांस होते हैं तीव्र पाप कर्म के उदय के। सब होता है, 90% कह रहा हूं। जिसके पुण्य का उदय होता है ना, महेंद्र भाई आप उसको कहो कि भैया प्रवचन सुनने के लिए आओ, सत्संग में आओ, अरे ये तुम लोगों के काम है करो, हमारी तो लाइफ मस्ती से बीत रही है। लेकिन जिसके थोड़ा पाप कर्म का उदय आता है, जिसके घर में थोड़ा संकट आ गया, जिसके बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया, जिसका जवान बेटा मर गया, आप उससे कहो तो सत्संग में आना शुरू कर देगा। उसे संसार आसार दिखने लगता है, उसे और कोई शरण नहीं दिखता, धर्म ही एकमात्र शरण है, धर्म के अलावा अन्य कहीं शरण नहीं है। आप बताओ क्या करे वो? अभी जिसके पास में पैसा है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, उसे धर्म नहीं दिखता, उसे स्वाध्याय नहीं दिखता, उसे चिंतन मनन आत्म कल्याण की बातें हैं, उसे बकवास दिखती है, उसे व्यर्थ दिखती है, वो कहता है इसमें क्या दम है, ये सब बेकार है। और जैसे ही पाप कर्म का उदय आता है तब लगता है यार संसार असार है, यार सच में कुछ दम नहीं है। फिर उसे लगने लगता है इसी में सार है, आत्मा की चर्चा करने में ही सार है, वेद विज्ञान की चर्चा करने में ही सार है। मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ये देह पड़ी रह जाती है, यहाँ देखो ये मिट्टी पड़ी है, ये तन पड़ा रह जाता है, और चेतन जो तन से भिन्न है, चेतन वो निकल करके चला जाता है। सुखी होने का मार्ग तन से भिन्न चेतन को देखना है, ये जो बात है निज सत्ता की जिन्होंने यहाँ बात की है, निज मां निज बुद्धि, चेतन में चेतन बुद्धि, अपने में अपनापन, ये सुखी होने का उपाय है। तो पुण्य कैसा लगता है? मजा तो आता है पुण्य में, पुण्य में बहुत मजा आता है, पुण्य मजेदार दिखता है हमारे को, क्योंकि पुण्य में मिठास दिखती है, पुण्य में रस आता है। कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे वो ज्यादा खतरनाक है, निंदा करे यदि कोई व्यक्ति तो वो अच्छा है हमारे लिए। यदि कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, तो समझ लीजिए हमारे सुधरने के चांस है, प्रशंसा में अभिमान में फूल जाता है, मदमस्त हो जाता है। अच्छे अच्छे संत महात्मा पाप कर्म के उदय को तो जीत लेते हैं, क्रोध पर तो विजय प्राप्त कर लेते हैं, प्रतिकूलताओं को तो जीत लेते हैं, लेकिन अनुकूलताओं को जीतना उनको भारी पड़ता है। क्या कहा? पाप कर्म के उदय उपसर्ग और परिचयों को खूब जीत लेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति तारीफ कर दे तो वो तारीफ की ठंडी हवा नुकसान करने लगती है, उससे बचना बड़ा भारी काम है। क्योंकि अंदर ही अंदर मिठास दिखती है उसकी, ये मान मीठा जहर है, जहर है मीठा है लेकिन मिठास दिखती है इसमें। मान महाविष रूप, दस लक्षण धर्म की पूजन में इस मान को महान विष रूप कहा है, कषाय है भाई, कषाय। कोई व्यक्ति हमारे को ये कहे दिनेश भाई बहुत धर्मात्मा है, कोई व्यक्ति यदि ये कहे ये देखो कितने पापी हैं, तो तुरंत हम सुना मुझे पापी कह रहे हो, 40 साल से सुन रहा हूँ, सत्संग में जाता हूँ, मुझे पापी कह रहा है, रोज मंदिर जाता हूँ, रोजाना पूजन करता हूँ, मैं पापी हूँ, कितनी देर स्वाध्याय करता हूँ, 8 बार तो शिखर जी की यात्रा करके आया हूँ, रोजाना 11 माला फेरता हूँ, इतनी बार गिरनार जी चला गया, इतनी बार वहां चला गया, इतनी बार शत्रुंजय की वंदना की, इतनी बार बुंदेलखंड की यात्रा की, इतनी बार वहां की गिरनार जी गया, फटाफट फटाफट लिस्ट सुनाने लगता है, कितना धर्म किया मैंने, मुझे पापी कह रहा है, अपने आप को देख जरा। हाँ साहब बहुत अच्छा, खूब धर्म किया आपने, कितना धर्म करते हो आप, रोजाना 4 घंटा धर्म करते हो, और क्या, रोजाना 4 घंटा धर्म करता हूँ मैं। अच्छा 24 घंटे में से 4 घंटे धर्म करने से आप धर्मात्मा, तो बाकी के 20 घंटे 4 घंटे धर्म करके हम धर्मात्मा कहलाना चाहते हैं, अब बाकी 20 घंटे पाप करके पापी कहलाने में हमारे को क्यों ऐतराज होता है? बाकी का 20 घंटा तो पाप में ही जा रहा है, विषय भोगों में ही जा रहा है। 4 घंटा धर्म ध्यान में बिताया वो तो बता दिया, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना टाइम लगाता है, टीवी के चैनल कितनी देर घुमाता है, खाने पीने की चर्चाओं में कितना रस लेता है, बीच पर घूमने जाता है तो कितना मजा आता है, कितने कितने दिन बीच बीच में गोल कर देता है सत्संग, वो कहाँ जाएगा सब बोलो, वो नहीं दिखता है हमारे को। भाई साहब ये अटकने के स्थान है, थोड़ा बहुत पुण्य करके संतुष्टि ये बाधक है, संतुष्टि ये घातक है। मैं जो पुण्य को बार बार मैं भला कहता हूँ, ये पुण्य बुरा कहता हूँ, ये बुरा कहने का अभिप्राय पुण्य से कोई मेरी दुश्मनी हो ऐसा नहीं है। मैं पुण्य को जितना बुरा कहता हूँ, मेरा अधिक से अधिक फल पुण्य में ही बिताता हूँ। क्या कहा? बुरा तो कहता हूँ मैं, लेकिन बुरा कहने के पीछे अभिप्राय ये है कि इसमें अटकना मत, इसलिए बुरा कहता हूँ। अटकने के लिए बुरा है, छोड़ने के लिए नहीं, छूटेगा भूमिका अनुसार, आज मत छोड़ के बैठ जाना। पुण्य और पाप दोनों छोड़ने योग्य है, पाप भी करने योग्य नहीं है, पुण्य भी करने योग्य नहीं है, लेकिन एक लेवल के बाद श्रद्धा में ये रखना, मान्यता में ये रखना, ये धर्म नहीं है जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मान्यता में ये रखना कि मैं जो प्रवचन सुन रहा हूँ ये कोई धर्म नहीं है, धर्म तो कोई बहुत ऊंची चीज है। इसे अनंत बार सुना है, सुनने सुनाने में कहाँ धर्म है बतलाओ मेरे को? कान में ये चर्चा सुनने को मिल गई तो क्या धर्म हो गया? ये धर्म नहीं है, ये अभिप्राय निकले और लगातार इसमें लगा रहे तब तो सही समझ है, पर ये छोड़ दिया आपने, सत्संगी छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? फिर तो पाप में लगे। यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं तो मंदिर के ताला भी लगाते हैं और लाइट वगैरह भी बंद करते हैं, तो पहले क्या बंद करना? घर से जब कभी बाहर जाते हैं तो घर से ताला लगा के जाते हैं ना, ताला भी बंद करते हैं, माने घर भी बंद करते हैं और अंदर लाइट पंखे यदि कोई जल रहे हो तो वो भी बंद करते हैं, दोनों ही बंद करते हैं ना, दोनों ही बंद करने योग्य है या नहीं है? आप 15 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, यहाँ से इंडिया यदि आप गए 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो आप बराबर देखते हैं कि नहीं, पूरा चेक करते हैं कि नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ दोनों में क्या पहले बंद करना? पहले लाइट पंखा बंद करना, और पहले ताला बंद कर दिया तो क्या होगा? लाइट पंखा बंद नहीं होगा, अंदर रह गया। यही हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, पाप भी बंद करने योग्य है, पुण्य भी बंद करने योग्य है, लेकिन पुण्य और पाप दोनों के बंद करते समय ये सावधानी रखना कि पहले कौन बंद करने योग्य है। बोलो, पहले पाप बंद करने योग्य है। जिनका पाप नहीं छूटा हो वे पुण्य को छोड़ने की बिल्कुल चेष्टा मत करना। पहले पाप छोड़ना, पाप का छोड़ना सदाचार है और पुण्य का भी छूट जाना वो सच्चा धर्म है। अभी जो छूटने की बात कह रहा हूं वो तो बहुत आगे का लेवल हो गया, लेकिन पुण्य को छोड़ने योग्य समझ लेना वो धर्म की शुरुआत है। अंदर श्रद्धा में पुण्य को ही जान लेना उसे धर्म की शुरुआत कहते हैं, वो सच्चा धर्म है, उसी का नाम दीप रास्ता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। भाई ये धर्म कुछ अपूर्व है, ये धर्म कुछ अद्भुत है, ये धर्म की कुछ बात ही निराली है। सारा जगत जहां धर्म मानता है ये धर्म उससे ऊपर उठ करके बात करता है। हम जिस धर्म की बात करते हैं ये धर्म वस्तु स्वभाव धम्मो है, ये धर्म मिश्री का धर्म है, ये धर्म नमक का धर्म है, ये माइक का धर्म है, ये टेबल का धर्म है, ये मोबाइल का धर्म है, ये कैसा धर्म है बोलो? ये वस्तु धर्म है, वस्तु स्वभाव धम्मो। बोलो कैसा धर्म है? ये प्राणी मात्र का ही धर्म नहीं, ये वस्तु धर्म है। बोलो। अनेक लोग तो ये समझते हैं कि ये जैन धर्म एक जातीय कुल है। मैं कहता हूं कि एक कुल में जन्म लेने का नाम जैन धर्म नहीं है। मनुष्य मात्र जैन हो सकते हैं, और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो त्रियंच भी हैं, नारकी भी हैं और देव भी हैं। किसी भी गति में हो सब जगह पर यह धर्म लागू होता है। इतना ही नहीं, प्राणी मात्र, जीव मात्र, जीव मात्र ही नहीं, ये तो पुद्गल है भाई, इनमें भी अपना अपना धर्म है। हर वस्तु अनंत धर्मों से युक्त है, हर वस्तु में अनंत धर्म है। ये वस्तु धर्म को प्रतिपादित करता है, जो वस्तु स्वभाव धर्म को बतलाता है वो सच्चा धर्म है। यूनिवर्सल बात है ये जैन धर्म की बात। भले ही मैं यहाँ माइक से जैन सेंटर से बोलता हूँ, लेकिन ये बात जैन धर्म की नहीं है, ये बात वस्तु की है। ये वस्तु व्यवस्था है, ये प्रकृति है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आप पूछो जरा किसी भी साइंटिस्ट से, पूछो किसी इंजीनियर से, पूछो पढ़े लिखे व्यक्ति से, पूछो आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा तो वही, साइंस में कोई लेबोरेटरी में टेस्ट करो, आत्मा अलग दिखती है क्या आपको? उनसे पूछो कि डेड बॉडी कैसे पड़ी रह रही, क्या जवाब है उनके पास में? हमारी रिसर्च आत्मा में काम नहीं करती, वहां साइंस काम नहीं करती, तो कहां काम करेगी साइंस? हम शरीर का सोच सकते हैं, शरीर का इलाज कर सकते हैं, लेकिन यदि आत्मा का इलाज करना है तो आपको यहाँ सेंटर में जाना पड़ेगा। यहाँ आत्मा का इलाज होता है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ बीमारियों का इलाज होता है, यहाँ बीमार व्यक्ति आते हैं। हॉस्पिटल में जाने वाले तन से बीमार होते हैं और यहाँ आने वाले जो मन से बीमार होते हैं उनका इलाज होता है। इलाज दोनों जगह होता है। हम लोग मानसिक रोगी हैं, बुरा मत मानना। क्या मानसिक रोगी जानते हैं आप? मेंटल डिस्टर्ब, पागल, पागल थोड़ा सा शब्द जो है ना वो थोड़ा भारी हो गया। सच में ऐसा ही है, ये पागलपन है हमारे दिमाग में, क्योंकि जहाँ सुख नहीं है हम वहाँ सुख तलाश रहे हैं, ये पागलपन है। और जहाँ सुख है, सत्संग में जहाँ सुख कहा जाता है वहाँ हम सुख देखते नहीं है, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? पागल कैसे कहते हैं बोलो? दुनिया में पागल की क्या व्याख्या है? पागल किसे कहते हैं? उससे नाम पूछो तो पता नहीं, काम पूछो तो पता नहीं, ठिकाना पूछो तो पता नहीं, गलत गलत बतलाता है, कुछ का कुछ बोलता है, इसे ही तो पागल कहते हैं ना। तो यही पागल क्या है? अब पागल की परिभाषा भी मुझे बतानी पड़ेगी यहाँ, उसी को तो पागल कहते हैं। हम देखें जरा अपने आप सबको, हमने पूछा क्या नाम है भैया, तो नाम बतलाता है संजीव, ये पहला पागलपन। ये नाम किसका है बता? ये नाम शरीर का है कि तेरा है? तू शरीर है कि जीव है? ये नक्की कर, पहले निर्णय कर, मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं या मैं जीव हूं, ये निर्णय कर पहले। और जब इस बात का निर्णय होगा ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, फिर बता तेरा नाम क्या है, फिर बता काम क्या है। ज्ञान करना मेरा काम है, मात्र जानना मेरा काम, जानना देखना मेरा काम है, और तू बतलाता क्या काम है। पागलपन, उसका नाम पागलपन है। रहता कहाँ है वो, उस ठिकाने को जहाँ टेम्परेरी आया है, उस धर्मशाला को कहता है ये मेरा ठिकाना है। धर्मशाला कह रहा हूँ, हम लोग धर्मशाला में रहते हैं। टेम्परेरी निवास को धर्मशाला कहा जाता है, धर्मशाला की परिभाषा। जहां व्यक्ति आए, कुछ समय के लिए रहे और फिर चले जाएं, और फिर नए व्यक्ति आए और वो भी कुछ समय रहे, फिर वो भी चले जाएं, फिर और नए व्यक्ति आए, वे वहां रहे, कुछ समय रहे और चले जाएं, ऐसे स्थान को धर्मशाला कहा जाता है। हम लोग कहाँ रहते हैं? शाला में। जिसे हम अपना कह रहे हैं, जिसे हम अपना घर कह रहे हैं, हमसे पहले कोई और उसे अपना घर कहता था, उससे पहले कोई और उस जगह को अपनी कहता था, उससे पहले कोई और उस जगह को अपनी कहता था। सदा से यही होता चला आया है। ये धरती कभी किसी की नहीं हुई, ये जगह कभी किसी की नहीं हुई। हमने अपने घर को नहीं पहचाना। निज घर ना ही पहचान्या रे, 300 साल पुराना भजन है। अपने घर को नहीं पहचाना, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब हूं न निज घर आए। निज घर की पहचान ही नहीं है, एक ऐसा पागलपन सवार है। सुखी होने के नाम पर पुण्य और पाप दोनों हाथ पर गए। कल मैंने एग्जाम्पल देकर के बात की थी, पाप की तुलना में पुण्य जरूर भला दिखाई देता है, लेकिन धर्म की तुलना में देखो तो वो एक समान है। क्या एग्जाम्पल दिया था कल, ध्यान है आप लोगों को? कुछ पाप और पुण्य दोनों समान है, किसके लिए? पुण्य को अच्छा कहता है, इसके लिए। फिर सूट के चोरी होने की बात कही थी, है ना?
पहले चोरा है और पीछे।
हाँ, तो कौन सा अच्छा है? अच्छा तो दोनों नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में ही यदि सेलेक्ट करना हो तो परीक्षा का रिजल्ट आया और जो विद्यार्थी थे उनमें से एक विद्यार्थी जो फेल हो गया परीक्षा में, वो घर में उसके पिताजी ने बहुत डांटा, बाहर गया चौराहे पर जाकर के खड़ा हुआ। कुछ दोस्त और थे तो एक ने कहा उससे कि ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। ये फेल हो गया कितने सब्जेक्ट में हुआ है? बोले एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। ये एक सब्जेक्ट में हुआ है, इसको देखो, इसको, ये नालायक, ये तो पूरे ही सब्जेक्ट के अंदर डब्बा गोल है, सारे के सारे सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गया है। ये तो इससे तो बहुत अच्छा है, ये तो कम से कम एक ही में फेल हुआ है, और ये तो सब में फेल हो गया, इससे तो बहुत अच्छा है। वो बच्चा गया घर, घर जाकर के बोलता है, पिताजी क्या बात करते हो आप, आपने कितना डांटा है मेरे को, आप जरा उन अंकल की बात तो सुनते, मैं खड़ा था अभी चौराहे पर, कितनी तारीफ की है उन्होंने मेरी, उससे कितना अच्छा हूं मैं, ये तो इतना अच्छा हूं, एक ही सब्जेक्ट में तो हुआ हूं, क्या फर्क पड़ गया, मिठाई बंटवानी चाहिए ऐसे में। तो मैं आपसे पूछता हूं, वो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो बहुत अच्छा है या नहीं है? एक सब्जेक्ट में फेल होना अच्छा है या नहीं है? एक सब्जेक्ट में फेल होना अच्छा नहीं है? अभी तो उसकी तारीफ हो रही थी चौराहे पर, सब तारीफ कर रहे थे उसकी। अरे भला तो नहीं है, ये तो उसकी तुलना में कहा गया है, इसको कोई भला समझ करके आस पड़ोस में मिठाई बंटवाने लगे तो पागल है। समझ में आ रही है बात? ये पाप की तुलना में पुण्य को भला कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये पुण्य भी भला नहीं है, ये अटकाने वाला है। وہ جو ایک سبجیکٹ میں فیل ہوا ہے نا, ایک سبجیکٹ میں فیل ہوا ہو یا چھ سبجیکٹ میں فیل ہوا ہو, کلاس دونوں نہیں چڑھیں گے آگے. دونوں کو کلاس چڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے. ٹینتھ کا ایگزام دیا ہے تو الیونتھ میں دونوں نہیں جائیں گے, وہاں دونوں برابر ہیں. الیونتھ میں جانے کی اپیکشا سے دیکھو تو دونوں برابر ہیں, اور کسی سبجیکٹ کی گڑنا کر کے دیکھو تو وہ اس سے اچھا بھلے کہہ دو آپ, لیکن وہ اچھا ہی کس کام کی. موکش مارگ میں چلنے کی اپیکشا سے دیکھو, موکش پراپت کرنے کی اپیکشا سے دیکھو تو دونوں ایک سمان ہیں. دونوں کے رہتے ہوئے مکتی کی پراپتی نہیں ہوتی, دونوں کرم ہیں, دونوں بندھن ہیں, دونوں میں شانتی نہیں ہے, دونوں میں دوڑ دھوپ ہے, دونوں میں آکلتا ہے. آکلتا کم نہیں ہے پنیہ میں, پنیہ کی آکلتا بھی بڑی بہت ہوتی ہے. گھر سے دوڑتے ہوئے جو آپ یہاں آتے ہو کہ آٹھ بجنے والے ہیں, یہ آکلتا پنیہ کی آکلتا ہے. پاپ میں آکلتا ہوتی ہے اور پنیہ میں بھی آکلتا ہوتی ہے. یہاں آنے کی آکلتا ہوتی ہے, پھر یہاں سے جانے کی بھی آکلتا کم نہیں ہوتی. کتنی دیر اچھا لگتا ہے بولو؟ اچھا تو لگتا ہے. میں نے کئی لوگوں سے سنا جو ایسا کہتے ہیں, ارے پنڈت جی جب آپ بولتے ہوں تو ایسا من کرتا ہے کہ یہیں بیٹھے رہیں, آپ بولتے رہو اور ہم سناتے رہیں. میں نے کہا آپ بیٹھو میں سناتا ہوں. نہیں نہیں ابھی تو چلیں گے. کیوں کیا ہوا؟ لگتا ہی ہے ایسا, بس اوپر اوپر سے. ایک ٹائم سے اوپر جب بات نکل جاتی ہے تو پھر ایسا لگنے لگتا ہے کہ بس بہت ہو گیا. سننے میں اچھا لگتا ہے بھائی صاحب, یہ سننے میں اچھے لگنے کی بات نہیں ہے, یہ تو جیون میں اترنا چاہیے. جیون میں تو کشائیں, جیون میں تو آکلتا ہے. ایک بار کسی ویکتی نے ہمارے کو کچھ کہہ دیا اور اس کو لے کر کے برسوں تک بیٹھے رہتے ہیں ہم, یہ تو ہماری حالت ہے. کشائیوں کے پریناموں کو گھانٹ باندھ کر کے رکھ لیتے ہیں. بھائی صاحب کس کو تکلیف دے گا وہ اپنے کو ہی تکلیف دینے والا ہے, کسی اور کو تکلیف نہیں دے گا. کوئی پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس, یہ چیز کوئی بھی ایک چیز جس میں وزن سمجھ لیجئے آپ پاؤ بھر وزن ہے, 250 گرام وزن ہے, جس چیز میں آدھا کلو وزن ہے, آپ اٹھا سکتے ہیں؟ اٹھا سکتے ہیں رمیش بھائی اس کو ایسے ایسے ہاتھ میں اٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں؟ ایسے کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ اتنا سا وزن ہے اس میں کیا ہے یہ اٹھایا, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ رکھ دیے نیچے. اچھا یدی اس کو میں یہ کہوں کہ ایسے اٹھا کر کے رکھنا ہے آپ کو, ایک دو گھنٹہ رکھنا ہے, اب کیا ہوگا بولو؟ ایک دو گھنٹہ رکھنا, تھوڑا سا ہاتھ میں درد ہو سکتا ہے, ہو کیا سکتا ہے, ہو ہی جائے گا. ایک دو گھنٹے ہاتھ میں اس کو ایسے ایسے کنٹینیو رکھے رکھو, ایسے ہی رکھنا ہے آپ کو. ایک منٹ کے لیے اٹھایا اور رکھ دیا میں تو کوئی دم نہیں ہے, اٹھاتے ہی ترنت رکھ دیا کوئی دم نہیں ہے. اور یدی آپ سے کہے ایک گھنٹے ایسے ہی رکھو, آپ دو گھنٹے ایسے ہی رکھو, تو ہاتھ میں درد ہونے لگ جاتا ہے. اور ہم نے یدی یہ کہا کہ آپ اسے دن بھر ہاتھ میں رکھو صبح سے شام تک, میور بھائی کے پاس میں جانا پڑے گا, اٹیک آ جائے گا بھائی صاحب, پیرالیسس کا اٹیک آ سکتا ہے, نسیں جام ہو سکتی ہے, گڑبڑ ہو سکتی ہے, سب ہو سکتا ہے. یہ ہاتھ اتنا اکڑ جائے کہ سیدھا نہ ہوئے صبح سے شام تک, یدی آپ نے اس کو ایسے رکھ لیا یہ ہاتھ سیدھا نہیں کیا جائے گا, آپریشن کرنے کی نوبت آ سکتی ہے. بولو پریکٹیکل ہے کہ نہیں یہ بات؟ بالکل پریکٹیکل لگتی ہے نا, کسی کو ایسا تو نہیں لگتا کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں. یہ بالکل انوبھو کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں, وزن اٹھانے کی. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی ویکتی نے یدی آپ کو کوئی اپشبد کہے ہیں, کوئی بری بات کہی ہے, تو آپ اسے اپنے ماتھے پر کتنی دیر رکھتے ہیں؟ آپ نے یدی اس بات کو سن کر کے ترنت اتار دیا ہے تو سمجھ لیجئے آپ نے سمجھداری کا کام کیا ہے, آپ کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہوگی. اور آپ نے یدی تھوڑے سمے کے لیے اسے اپنے ماتھے پر جھیل کر کے رکھا ہے تو آپ پیڑا پائیں گے, تکلیف پائیں گے. اور یدی آپ نے لمبے سمے تک اسے اپنے ماتھے پہ بٹھا کے رکھ لیا, بگڑ گیا بھاؤ آپ کا, بھاؤ خراب کر دیا آپ نے. یہاں تو سب سمجھدار ہیں, زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو رکھ لیتا ہے. اور بتاؤں آپ کو, رکھ کیا دیتا ہے, یدی لے کر کے جانا ہو تو ادھر سے ادھر بدل لیتا ہے, ہاتھ بدل لیتا ہے, کندھا بدل لیتا ہے. لیکن وہاں کہہ رہے ہیں بھیا ہم جو کشائے کا پرینام ہے وہ بدلا کے نہیں, وہ رکا کے نہیں, وہ مٹایا نہیں. یعنی آپ نے وہ پرینام نہیں مٹایا اپنا, کشائے کا پرینام یعنی آپ نے اپنا نہیں مٹایا, آپ نے ماتھے پر جو وزن رکھ لیا تھا وہ نہیں اتارا, تو پورا کا پورا بھاؤ بگڑ گیا آپ کا, یہ بھاؤ بگڑ گیا. اور ہو سکتا ہے آپ نے جو انتانوبندی کشائے سے جو بیر باندھ لیا تھا یہ نہ معلوم کتنے بھاؤ بگاڑ دے گا. کمٹ کے 10 بھاؤ بگڑ گئے, پارسناتھ کا کیا بگاڑ لیا بولو؟ 10 بھاؤ سے بیر تھا, کمٹ اور مروبھوتی دونوں بھائی بھائی تھے. 10 بھاؤ پہلے ایک گھٹنا سے کروجت ہو کر کے وہ بگڑ گیا اور بیر باندھ لیا اس نے, جو کچھ بھی ہوا ہو ان کا آپس میں جھگڑا, اور پھر کیا ہوا کتنے بھاؤ تک چلتا رہا, بدلہ لینا چاہتا تھا نا, پھر لے پایا یا نہیں, بدلہ لیا یا نہیں, کچھ کیا کر لے گا, کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہو آپ, کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دوسرے کو بگاڑنے کے پریناموں سے ہم اپنا ہی بگاڑ کر رہے ہیں, کوئی کسی کا نہیں بگاڑتا بھیا. پر میں آپ کی چلتی نہیں ہے, دوسرے میں آپ کی چلتی نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں آپ کے پریناموں میں آپ کی نہیں چلتی, آپ کے پریناموں میں آپ کی نہیں چلتی, آپ کے پریناموں میں آپ پھیر پھار نہیں کر سکتے, آپ دوسروں کی کیا بات کرو. بڑے بڑے مہا پروشوں کے جیون میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پریناموں کو بدل نہیں سکتے. نیمی ناتھ جب ان کے پاس میں شادی کا پرستاو آیا تو انہوں نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی, اور ہاں کی تھی تو بیچ میں چھوڑ کیوں دی؟ جب من میں نہیں تھی تو نہیں کرتے, اور من میں تھی تو کر لیتے, ایسے بیچ میں چھوڑ دینا سمجھداری کا کام نہیں ہے. اور چلو کوئی بات نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں وہ تو اودھی گیانی تھے جنم سے ہی, اودھی گیان کا پریوگ کر کے دیکھتے ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے. بیچارے راجل کا جیون خراب کر دیا, خراب تو نہیں کیا کیونکہ راجل نے تو سفل کر لیا اپنا جیون, اس نے تو دیکھیا لے لی, اس نے تو سادھنا کی, لیکن پھر بھی وہ بدل نہیں سکتے تھے اپنے پریناموں کو. جب جیسا پرینام آیا تب تیسا کہہ دیا, وہاں جا کر کے دروازے پر جا کر کے برات کھڑی تھی اور پرینام بدل گیا تو بدل گیا, نہ اس کو ٹال سکتے تھے نہ اس کو ٹال سکتے تھے, کون بدلے اس کو, بدلا نہیں جا سکتا ہے. ہم اپنے پرینام کو کتنا بدلنے کی کوشش کریں, ارے یہاں بیٹھے بیٹھے بھی آپ اپنے پریناموں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کے پرینام یہاں سے گھر چلے جاتے ہیں, آپ کے پرینام یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں, پریزنٹ باڈی ایبسنٹ مائنڈ ہو جاتے ہیں آپ, مائنڈ کہیں اور چلا جاتا ہے, دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. جب کبھی آپ سیڈی دوبارہ سنتے ہیں, کیسے دوبارہ سنتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ بات تو میں نے سنی نہیں تھی کہ اس سمے آپ ایبسنٹ ہو گئے تھے, کہ بیٹھا تو وہی تھا کہ مائنڈ سے ایبسنٹ ہو گئے تھے, دماغ چلا گیا کہیں اور, اپیوگ چلا گیا, بدھی چلے گئی, جان ادھر سے ادھر دوڑتا ہے, اپیوگ ادھر سے ادھر دوڑتا ہے. آپ کے پرینام آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ تو چاہتے ہیں بہت, کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ ایسا کہتے ہیں میں تو چاہتا نہیں تھا, پھر پتا نہیں کیوں ایسا ہوا, پتا نہیں کیوں ایسے بھاؤ آ گئے. پنڈت جی ایسے بھاؤ کیوں آ جاتے ہیں, ہم کیا بتلائیں کیوں آ جاتے ہیں, پریکٹس کی کمی ہے. ابھیاس کرو, وستو سوروپ کا وچار کرو, چنتن کرو, چنتن کی ڈوز اور بڑھا دو. طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, ڈوز خوراک اور بڑھا دو, دوائی تو یہی ہے. چنتن چیتن رام سب روگوں کی ایک دوا ہے, چنتن چیتن رام سب روگوں کی ایک دوا ہے, کہ بلڈ پریشر کی ایک دوا ہے, کیا دوا ہے, چنتن چیتن رام, چیتن رام کا چنتن یہی دوا ہے, بلڈ پریشر کی دوائی, ٹینشن کی یہ دوائی ہے, پھر ڈپریشن کی ایک ہی دوائی ہے, چنتن چیتن رام. پورے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ, ایک ہی دوائی ہے, چنتن چیتن رام. چنتن تو کیا میں نے لیکن پھر بھی کوئی جھگڑے کم نہیں ہوئے, ڈوز بڑھا دو, دوائی تو یہی ہے, اس کے علاوہ دوسری کوئی دوائی نہیں ہے. وستو سوروپ وچار خوشی سے سب دکھ سنکٹ سہا کرے, وستو سوروپ کے وچار کے علاوہ دوسرا کوئی اپائے نہیں ہے, نتھنگ ایلس. اور کچھ ہو تو بتا, کر کے دیکھ لو آپ. میں کہتا ہوں یعنی مان لیجئے ہمارے گھر میں کسی کا سورگواس ہو گیا, پتا جی کا سورگواس ہو گیا, بیٹے کا سورگواس ہو گیا, کسی بھی ویکتی کے یہاں, اب اس ویکتی کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو مٹانے کا اپائے بتاؤ, بولو کیا اپائے ہے رمیش بھائی, کیا اپائے ہے اس تکلیف کو مٹانے کا؟ مووی چلاؤ کوئی اچھی سی, بولو. جس کا جوان بیٹا مر گیا ہے 22 سال کا 20 سال کا, اس ویکتی کو کہو کون سی مووی پسند تھی, ارے یار تم تو شولے کے دیوانے تھے, 20 بار دیکھیے تم نے, واپس لگاؤ یہ دیکھو کیسے نہیں ہنستے ہیں, اب کہاں ہنسی, اب ہنسی نہیں دکھتی ہے. اس کو پرسن میں کرنے کے لیے کیا کریں, کوئی اچھا گراہک لے کر کے آئیں, کوئی اور اپائے, اس سے پوچھو مٹھائی میں کیا کھاؤں گے شام کو, کیا بنائیں, گھر کی بنائی بہت شاندار, اس مٹھائی کا نام بتلاؤ جس کا نام سنتے ہی وہ آفس سے جلدی آ جاتا تھا گھر پہ, آج وہ بنی ہے تو کیوں ہو سکتا ہے, کیوں اس کا ٹینڈر پاس کروا دو اب تو سکھی ہو جائے گا, اس کا پروموشن کروا دو اب تو سکھی ہو جائے گا, کیا گفٹ دی جائے گی سکھی ہو جائے, اپائے تو بتلاؤ میرے کو, کوئی تو اپائے ہوگا, سب روگوں کی ایک دوا ہے چنتن چیتن رام, وستو سوروپ کے وچار کے علاوہ انیہ کہیں شانتی. ہاں
ابھی آپ نے جو پنیہ کیا سمیر درشن کی ساتھ,
ہاں
وہ پنیہ کا فرق کیا ہو
سمیر درشن کے ساتھ والا پنیہ, ابھی تو کہا میں نے چکرورتتو کی پراپتی, سمیر درشن کے ساتھ والے پنیہ میں چکرورتتو ملتا ہے. اچھا میں کتنی پریکٹس کروں, کتنی کوشش کروں, کتنی دکان چلاؤں, کتنے بزنس چلاؤں, کتنی فیکٹریاں لگاؤں کہ چکرورتی بن جاؤں, بولو. پنیہ انوبندھی پنیہ, ایسا پنیہ کرنا یا ایسے پنیہ کا ادے جس میں دوبارہ پنیہ ہو, پنیہ میں پنیہ کی پراپتی ہو, ٹھیک ہے نا. میں چکرورتی کے بارے میں پوچھتا ہوں آپ سے, یہ چکرورتی جتنے بھی بنتے ہیں یہ بزنس اور فیکٹریاں لگا کر کے چکرورتی نہیں بنتے ہیں کیا؟
یہ سمیہ
درشتی جی جو یہ
چکرورتی بنے پنیہ باندھتے
ہیں, باندھتے نہیں ہیں, ہاں وہ پنیہ ایسا ہوتا ہے, وہ پنیہ کو پراپت کرتے ہیں لیکن پھر بھی اٹکتے نہیں ہیں اس میں. سمیک درشتی یعنی جیووں کو چکرورتی پد مل گیا تو چکرورتی پد میں اٹکیں گے تھوڑی نا, وہ بھی یدی اٹک جائیں مان لو تو نرک تل تیار ہے. یہ پاپ چھوڑتا نہیں ہے, کسی کو سگا نہیں ہے کہ سمیک درشتی ہو گیا بیچ لگا لیا تو اس کو تو انٹری ہے, کوئی بات نہیں ہوگا سمیک درشتی, یہ پاپ کسی کو نہیں چھوڑے گا, یہ کرم کسی کے سگے نہیں ہے, کسی سے ریلیشن نہیں نبھاتے, اپنا کام بخوبی کرتے ہیں, بالکل کریں گے اپنا کام, کسی کو نہیں چھوڑیں گے, ارے تیرتھنکروں جیسوں کو نہیں چھوڑتے. پاپ کرم کا ہدے آئے گا تو کوئی بھی ہو ہمارے لیے سب برابر ہیں, چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. ہاں دیکھو لیکن سمیک درشتی گیانی جیووں کا پنیہ پرتاپ دیکھو, ان کا پروشارتھ دیکھو, پنیہ کے ادے میں چکرورتتو کی پراپتی ہوئی لیکن اس چکرورتی پد کو بھی دھول سمجھتے ہیں, ماٹی سمجھتے ہیں, اس پنیہ کو ہی سمجھتے ہیں, اس کا ترسکار کر کے دکشا لے کر کے چلے جاتے ہیں, سنیم انگیکار کر لیتے ہیں کہ پنیہ میرا نہیں ہے. بولو سادھنا کے مارگ میں لگتے ہیں, یہ پنیہ کرتا ہے ویکتی, کیا جائے گا, کرے گا کیا بتلاؤ, مندر نہیں آئے گا تو کیا کرے گا, دیو درشن کے لیے نہیں آئے گا تو دور درشن میں جائے گا, کیا کرے گا بتلاؤ میرے کو, شاستر نہیں پڑھے گا کیا, جنوانی نہیں پڑھے گا تو نیوز پیپر پڑھے گا, یہاں مندر آ کر کے بچوں کا یہاں پرتیما کا ابھیشیک نہیں کرے گا تو گھر میں بچوں کا ابھیشیک کرے گا, کیا کرے گا بتلا, صرف کوئی کام تو چاہیے نا, اپیوگ ادھر نہیں لگے گا تو ادھر لگے گا, اپیوگ کو تو کوئی نہ کوئی خوراک چاہیے, विषय चाहिए, अवलंबन चाहिए। आपने यदि अवलंबन अच्छी जगह लिया है तो वो खोटी चीज चल जाएगी, और यदि आपने बुद्धि पूर्वक अच्छी जगह उपयोग नहीं लगाया है तो अपने आप खोटी जगह तो जाना ही है। कहते ना, आपका यदि मान लीजिए फार्म हाउस है या आपका कोई ऐसा गार्डन है और आपने बुद्धि पूर्वक मेहनत करके उसमें कोई अच्छी चीजें नहीं उगाई है तो घास फूस तो उगना ही अपने आप ही। ये दिमाग भी ऐसा ही है, जहाँ फसल उगती है अपने आप उगती है। तो आपने यदि बुद्धिपूर्वक सत्संग के माध्यम से, तत्व चर्चा के माध्यम से, वस्तु स्वरूप के विचार के माध्यम से, अच्छे चिंतन के माध्यम से अच्छी फसल यदि नहीं बनाई है तो फिर क्या होगा कि कचरा तो अपने आप आना ही है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, प्रसिद्ध कहावत है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्या मतलब खाली दिमाग शैतान का घर? मतलब जब दिमाग में आपके जिनवाणी नहीं होती है, जब दिमाग में आपके भावना अच्छी नहीं होती है तो अपने आप खुरापात सूझती है, अपने आप होता है वो सब। सावधान रहो आप, सतर्क रहो आप। माने हमें इतना सावधान रहने की जरूरत है कि हमारे माध्यम से कोई गलत काम न हो तो बुद्धिपूर्वक। देखो, पाप करने के लिए आप छोड़ दो अपने उपयोग को, अपने आप पाप में चला जाएगा। और पुण्य बुद्धिपूर्वक करना पड़ता है, और धर्म पुरुषार्थ से होता है।
वो अनादि का संस्कार है,
अनादि का संस्कार है, अपने आप चला जाएगा। आप खुला छोड़ दो अपने दिमाग को। आप कहते हो ना आप कितने धर्मात्मा हैं, जरा तोलना उसको, कोशिश करना। आप क्या करना, हमें कोशिश करना है, तोलना है अपने आप को कि हम कितने धर्मात्मा हैं। आप जरा खुला छोड़ दो अपने उपयोग को, आपका उपयोग किधर दौड़ता है। भाई साहब, उपयोग को इधर धर्म ध्यान, जिसे व्यवहार से धर्म ध्यान कहा जाता है, इधर लगाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। दो दिन मंदिर नहीं आओ तो दिमाग टीवी में चला जाता है। बोलो, इधर यदि बुद्धिपूर्वक नहीं लगाओगे, यदि ये चरणानुयोग की बात नहीं पढ़ोगे तो वहां भोजन में बुद्धि लगी रहेगी। बुद्धि तो लगेगी कहीं ना कहीं, दिमाग है, तैनी पंचेंद्रीय है, उपयुक्त तो लगाएगा, या नहीं लगाएगा तो वहां लगाएगा, और वहां नहीं लगाएगा तो वहां लगाएगा, कहीं ना कहीं तो लगेगी। अब आप किधर लगाना चाहते हो, बुद्धिपूर्वक आप निर्णय करें आपके सुख का मार्ग क्या है, शांति का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग किधर से जाता है। पुण्य और पाप ये दोनों ही प्रकार के परिणाम छोड़ने योग्य है। सामान्य सदाचार नहीं। जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष होते हैं, ध्यान देना, जो सम्यक दृष्टि पुरुष होते हैं, आत्मानुभवी पुरुष होते हैं, उनके जीवन में जैसा सदाचार होता है वो सदाचार की तो कल्पना नहीं कर सकते हम। हम क्या बराबरी करेंगे उसकी। पुण्य को हे बतला रहे हैं, सदाचार को जड़ की क्रिया बतला रहे हैं, लेकिन फिर भी सदाचार को जड़ की क्रिया बतलाते हुए भी सामान्य सदाचार में रंच मात्र भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। उनके जीवन से, उनकी परिणति से किसी भी प्रकार की शिकायत की गुंजाइश नहीं की जा सकती है। पांच पापों का अस्तित्व नहीं दिखता उनके जीवन में, हिंसा नहीं दिखती, देखते हैं तो चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं, चलते हैं तो बोलते हैं तो हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, कठोर वचन नहीं निकलते उनके मुख से। कैसा जीवन होता है उनका। ज्ञानियों का, साधकों का जीवन ही कुछ अपूर्व होता है। ये साधक महापुरुष दिखते हैं, जितने वचन दिखते हैं अपने, ये सब साधकों के हैं। ये जितनी जनवाणी दिखती है ये साधना करने वालों के वचन है, साधना के का पथ अपनाया है उन्होंने। हम क्या करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं या नहीं, ये नक्की करो। यदि आप सुख चाहते हैं तो आश्रव और बंध छोड़ो, संवर और निर्जरा अपनाओ। संवर क्या चीज है, शास्त्र का शब्द है। निर्जरा क्या चीज है, शास्त्र का शब्द है। मैं शास्त्र की भाषा में नहीं समझाता आपको, शास्त्र की भाषा में बात नहीं करता मैं आपसे, बात करता हूं बोलचाल की भाषा में। संवर माने सुख की उत्पत्ति, सच्चे सुख की प्रकटता, उसका नाम संवर है। शुद्धि की उत्पत्ति, उसका नाम संवर है। शुद्धि की वृद्धि, सुख की वृद्धि, उसका नाम निर्जरा है। कर्णानुयोग अलग तरह से बात करेगा। कर्णानुयोग ये कहेगा, आते हुए कर्मों के रुकने को संवर कहते हैं। पहले के बंधे हुए कर्मों के छूट जाने को निर्जरा कहते हैं। करना में जो कह रहा है कर्मों के छूटने को निर्जरा कहते हैं, आते हुए कर्मों के रुकने को संवर कहते हैं। आश्रव निरोध है संवर है, तस्वर सूत्र उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं हमारे को, आश्रव के निरोध का नाम संवर है। मैं कुछ और बात कहना चाह रहा हूँ, आते हुए कर्मों के रुकने से मुझे क्या लेना देना, वो जब कर्म रुकते हैं तो अंदर में क्या होता है, कर्मों का रुकना कर्म में, कर्म का रुकना पुद्गल का काम, जड़ की क्रिया, अंदर में क्या हुआ, अंदर में शुद्धि की प्रकटता, अंदर में आनंद की उत्पत्ति, अतिंद्रिय आनंद की प्रकटता। बोलो, यह आनंद जब अंदर में प्रकट होता है, शुद्धि जब अंदर में प्रकट होती है तो आनंद आता है, अपूर्व आनंद आता है, ऐसा विलक्षण आनंद आता है अनादि काल में आज तक कभी ऐसा आनंद नहीं आया, उसका नाम है संवर, वो है आत्मा का आनंद। सारे विषयों के आनंद फीके पड़ जाते हैं उस आनंद के सामने, ऐसा आनंद है वो आत्मा का आनंद है, वो आत्मिक आनंद है। हमने कभी उस आनंद का अनुभव नहीं किया इसलिए हमें वो बात काल्पनिक सी लगती है, लेकिन जिन्होंने वो अनुभव किया है फिर उनको विषयों में आनंद नहीं आता। पंचेंद्रीय विषय भोगों को छोड़ देना आसान काम नहीं है, लेकिन कैसे छूट जाता है सहज ज्ञानियों के जीवन में, अपने आप कैसे छूट जाता है, इसलिए छूट जाता है कि वो आनंद मिल गया है उनको, संवर है उनके जीवन में। और फिर उस संवर के बाद जब अपने उपयोग को अपने में लीन करते हैं तो फिर जो वृद्धि हो रही है धीरे धीरे डे बाय डे, उसमें जो प्रगाढ़ता आ रही है उसका नाम है शुद्धि की वृद्धि, उसका नाम है निर्जरा। कोई विलक्षण चीज है, कोई अपूर्व चीज है, अपूर्व निधि मिल गई है, शेर को मिल गई थी, मेंढक को मिल जाती है, जानवरों को मिल जाती है, तीन गति के अनपढ़ जीवों को भी मिल जाती है। दो चार निर्धारी मुनि राज आए सामने से उपदेश देने के लिए, हिरण को फाड़ करके खा रहा था, क्या हुआ बोलो, क्या चमत्कार हो गया, सम्यक दर्शन हो गया भाई साहब, सम्यक दर्शन। हम सम्यक दर्शन के लिए तरस रहे हैं, हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे मुफ्त में बट रहा हो जंगल में। वो मुनिराज आए और सम्यक दर्शन देकर, अरे देकर के नहीं गए, उसकी तैयारी न मालूम कितने भवों से चल रही होगी। हमें वर्तमान दिखता है, वर्तमान नहीं, तैयारी चल रही थी उसकी, पूर्व से तैयारी चल रही थी, पहले से तैयारी चल रही थी। वर्तमान में तो क्या किया, क्या हुआ होगा, वर्तमान में तो कुछ भी नहीं, क्या कहें हम वर्तमान के बारे में। तो
सातवीं नरक से आया,
सातवीं नरक से आया था, बोलो आप, महावीर स्वामी बनने वाला वो जीव सातवीं नरक से आया, क्रूर पशु है, सिंह है, हिरण को फाड़ करके खा रहा है, पंजे खून से लथपथ हैं, आधा मांस मुख के अंदर है, कुछ पेट में चला गया है, दांत से खून टपक रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, फोटो खींचो उसकी, रिकॉर्डिंग करो उसकी, दुनिया में कौन व्यक्ति है जो ये कहेगा कि व्यक्ति सम्यक दर्शन ले सकता है, पांच मिनट बाद में ये जीव सम्यक दर्शन लेगा। अंदर की तैयारी थी, दोनों मुनिराज आए सामने, सीमंदर स्वामी के समोह शरण के अंदर चर्चा चलती थी कि यहाँ कोई ऐसा जीव भी हो सकता है इस समय, या भरत क्षेत्र का आगामी काल में होने वाला तीर्थंकर कहाँ होगा इस समय, अरे महावीर स्वामी का जीव, बोले कहाँ पर है वो, जंगल में हिरण को फाड़ के खा रहा है। बोले दो व्यक्तियों को विकल्प आया, ऐसा दो मुनिराजों को विकल्प आया, चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य थी, आकाश मार्ग से गमन करते हुए उसी जगह पर पहुंच गए, देखा तो ये क्या हो रहा है, संबोधन करना शुरू किया, कौन सी भाषा में किया होगा मुकुंद भाई, कौन सी लैंग्वेज में किया होगा रामचंद मुनिराज ने, शेर की भाषा में किया होगा, शेर की तो भाषा मुनि राज पढ़ के आए होंगे कि यार शेर के पास में चल रहे हैं, पहले लैंग्वेज सीख के चले शेर की लैंग्वेज, तो शेर ने कहीं ऐसी लैंग्वेज सीखी होगी मुनिराज की जैसे समझ में आए, शेर मुनिराज की भाषा नहीं समझता, मुनिराज शेर की भाषा में नहीं बोलते, ये क्या हो रहा है। अरे जब आत्मा के अनुभव करने का काल पकता है तो वचन कोई मायना नहीं रखते, क्योंकि आत्मा का अनुभव वचनातीत होता है, वचनों से नहीं होता, शब्दों से नहीं होता, किसी के सिखाने से आत्मा का अनुभव नहीं होता, किसी के समझाने से नहीं होता, आत्मा का अनुभव तो अपने उपयोग को अपने में ले जाने से होता है, बाहर में नहीं होता ये सब काम। क्या समझाया होगा, क्या देखा होगा, क्या किया होगा, अनेक बार विचार आता है ऐसा, क्या किया होगा आखिर उन्होंने वहां बैठ करके। दोनों मनुजा सामने खड़े हुए हैं शेर के सामने, क्या पोजीशन क्या दिख रही है, कब कब टपक रहा है खून पंजों में से, सामने देखने लग गया एकदम। तो उन्हें क्या हो रहा है, ये कैसे आ रहे हैं मेरे पास में आ रहे हैं। शेर ने सोचा होगा, अपन विचार कर रहे हैं, इतना सोचा होगा मैंने मेरी लाइफ में कभी किसी को मेरे पास में आते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैंने आज तक अपना पेट भरने के लिए भी जिसके तरफ कदम बढ़ाया है उसको पीठ से ही पकड़ा है, सामने से कोई नहीं आया मेरे पास में, भागते हुए कोई पकड़ा है मैंने, कोई व्यक्ति मेरे पास में टिका नहीं है आज तक। ये कौन है, ये दिव्य पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये महापुरुष दिखाई दे रहे हैं, कौन है? मायाचार भी नहीं दिखता इनके चेहरे पर, छल नहीं दिखाई दे रहा है, ये मारने की भावना से नहीं आए हैं, इनके हाथ में बंदूक नहीं दिखाई दे रही है, हथियार नहीं है इनके पास में, शांत मुद्रा दिखाई दे रही है, शांत छवि दिखाई दे रही है। मैं इनको मार करके फाड़ के खा जाऊंगा, इनको डर नहीं लगता है, कैसे व्यक्ति है ये, क्या है ऐसा? देखो कुछ दिमाग काम करता है, पहली पंचेंद्री है, बुद्धि है उसकी, दिमाग काम कर रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, वो आधा मांस मुख में है, आधा बाहर है, कुछ हाथ में है, कुछ पेट में चला गया है, हिरण सामने रखा हुआ है, कपड़े कपड़े हो रहे हैं उसके, विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है। मुनिराज आए और उपदेश देने लग गए, उपदेश दे रहे हैं मुनिराज, क्या कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं मुनिराज अपनी भाषा में बोल रहे हैं, शेर अपने आप अपनी समझ से समझ रहा है, ये जरूर समझ में आ रहा है कि ये कोई दिव्य पुरुष है, ये कोई महापुरुष है, ये कोई मेरे भले की बात कहना चाहते हैं, ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मरने से नहीं डर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि शरीर को फाड़ दिया जाए तो मरता नहीं है, कुछ ऐसा भी होता है। आत्मा का भान हो गया भाई साहब, आत्मा का भान हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, संवर हो गया, संवर माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति, संवर माने धर्म की शुरुआत, सम्यक दर्शन कहो या संवर कहो एक ही बात है, सम्यक दर्शन होने पर ही संवर होता है, ये फाउंडेशन है, धर्म की नींव है ये नींव जब तक नहीं होगी तब तक कितना भी आप लगे रहो काम नहीं चलेगा, कितना भी लगे रहो किसी भी मार्ग पर। एक सेठ जी थे, मकान बनाया उन्होंने, बहुत पैसा था, अपने रहने के लिए अच्छा मकान बनाया, खूब पैसा लगाया, दिल खोल के पैसा खर्च किया, एक एक चीज छांट छांट के लेकर के आए, एक से एक आलीशान चीजें लेकर के आए, मकान को खूब सजाया, खूब तैयारी करी, खूब बढ़िया बनाया उन्होंने मकान, शिफ्ट भी हो गए, अच्छा धूमधाम से उत्सव भी किया, लोगों को बुलाया, खूब भोजन कराया, रहने लगे उस मकान में। लेकिन पता है क्या हुआ, 6 महीने बाद में एक बरसात आई, 4 महीने बाद में, और उनका मकान गिर गया। आप पूछ रहे हैं क्यों, आप सोच सकते हैं क्यों, मकान तो बहुत अच्छा बनाया था, सजाया भी बहुत अच्छा था, सजावट की तरफ भी बहुत ध्यान दिया, लेकिन फाउंडेशन नहीं थी, फाउंडेशन नहीं थी, नींव नहीं थी भाई साहब, नींव की तरफ ध्यान नहीं दिया, नहीं जमीन अमीन में क्या, अपने को तो सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जमीन में मत लगाओ, क्या कर रहे हो आप, ये सम्यक दर्शन फाउंडेशन है, कितना भी महल खड़ा कर लेना पुण्य का, शुभ भाव का, मंद कषाय का, त्याग का, व्रत का, संयम का, उपवास का, माला फेरने का, जाप करने का, मंदिर आने का, कितना भी महल खड़ा कर लेना और कितना भी सजा लेना बाहर से, लेकिन ये सम्यक दर्शन और संवर रूपी यदि फाउंडेशन नहीं है तो वो महल एक झोंका आएगा और सब ढह जाएगा। कौन सा झोंका आएगा, लाइफ चली जाती है उस झोंके में, फिर क्या होगा बताओ, उस व्रत का पढ़ा था आपने, उसका क्या होगा, अगले भाव में साथ साथ जाएगा, ये थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आपने कुछ दिन यहाँ आकर के ये सेंटर में प्रवचन सुने थे याद रहेगा, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। हाँ यदि आपको वेद विज्ञान है, यदि आपने इन सब के साथ में आत्मा का अनुभव कर लिया। आत्मा माने मैं अपने आप को पहचान लिया, इस शरीर में रहता हुआ जो तत्व है वो मैं हूँ, ऐसा यदि आपने अपने आप को यदि पहचान लिया तो फिर चिंता का काम नहीं है। फिर समझ लीजिए आप वो निज में निज पना वो 84 के परिभ्रमण को धो डालेगा। ये अपने में अपनेपन की बुद्धि 84 की रखड़ को मिट देगी। निज मां निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण दशा चले चल जाएगी। बोलो क्या काम करना है अब? परिभ्रमण दशा को टालना है। देखो यहाँ तो मेरे सामने कहते हैं हाँ पंडित जी परिभ्रमण दशा को टालना है, फिर कहते हैं आप तो कई जगह घूम के आए हो, कौन सी जगह अच्छी है? कौन सी जगह अच्छी है? परिभ्रमण को टालना है कि परिभ्रमण करना है? क्या बोलो क्या सोचते हैं हम? इसका मतलब ये है कि वो जो तत्व की बात है जो अंदर उतरनी चाहिए थी वो अंदर नहीं उतरी है, अभी शब्दों में है, अभी भाषा में है, अभी उसे अंदर में उतारने की जरूरत है। जब अंदर में उतरेगा तो फिर बाहर में जीवन अपने आप सुधर जाएगा। फिर जीवन सुधारना नहीं पड़ता, ज्ञानियों का जीवन अपने आप सुधरता है। कई लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे पंडित जी देखो हम तो चाहते भी नहीं है सम्यक दर्शन हो। क्यों क्या हुआ? अरे सम्यक दर्शन हो गया तो सारी घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी हमारी, ये चौपट हो जाएगी सब। पता है एक बार की बात मुझे ध्यान आती है ऐसी, वर्णी जी प्रवचन करते थे और वर्णी जी के प्रवचन सुनने के लिए तो काफी भीड़ आती थी, बहुत लोग आते थे। तो एक दिन प्रवचन करते करते प्रवचन शुरू हुए, 5 मिनट ही हुए थे और इतने में सेठ जी आए। सेठ जी रोजाना आते थे प्रवचन में, टाइम से पहले आकर के बैठते थे रोजाना। आज क्या हुआ? शुरू किए हुए 5 मिनट हुए, देर लग गए उनको थोड़ा सा। वर्णी जी प्रवचन करते करते बीच में ही बोल उठे, एकदम ही पता नहीं ऐसे ही विकल्प आ गया, क्या बात है पंडित जी आप आज लेट कैसे? ऐसे सेठ जी से पूछा, सेठ जी आज लेट कैसे? तो सेठ जी ने कहा पंडित जी बस कोई बात नहीं, वो ऐसे ही है कुछ बात। वो क्या बच्चा जिद करने लग गया था थोड़ा सा, तो थोड़ा टाइम लग गया। क्या जिद करने लग गया था? जिद करता था कि मैं भी चलूंगा सत्संग में, मैं भी चलूंगा प्रवचन सुनने के लिए। ये तो अच्छी बात है, आजकल ऐसे बच्चे मिलते कहाँ हैं जो खुद आगे होकर के कहे कि आपके साथ मैं भी सुनने के लिए चलूंगा, मैं भी मंदिर चलूंगा, मैं भी प्रवचन सुनूंगा, ऐसी बात करते कहाँ हैं? तो बहुत अच्छी बात हो गई। यदि बच्चा जिद कर रहा था तो ले आते, अरे नहीं नहीं पंडित जी आप समझते नहीं हो। पंडित जी ने कहा यार गजब बात करते हो, मैं समझता नहीं हूँ, मैं तो ये समझता था कि मैं समझता हूँ तुम समझने आते हो। बात समझ में आ रही है? आप कह रहे हो पंडित जी आप समझते नहीं हो कि क्या नहीं समझते? अरे आप समझते नहीं हो, वो नादान है क्या? वो नादान है और आप इन बातों को समझते नहीं हो, हम तो समझदार हैं। देखो वो यहाँ आ जाता, आप जो जितनी बातें बतलाते हो क्या पता कौन सी बात उसके लग जाती और वो घर छोड़ के निकल जाता। हम तो समझदार हैं, आपकी बात में से कौन सी सुनना और कौन सी छोड़ना, हम तो सब बराबर समझते हैं। आप कहो जो आपको कहना है, लेकिन हमें जो समझना है हम तो वही समझेंगे, हम तो समझदार हैं। क्या करें बोलो, सबकी दशा इसी तरह की है। वो जो सेठ जी दिखाई देते थे अकेले, उन सेठ जी की बात नहीं है, हम सब सेठ बन करके आए हैं। पंडित जी कुछ भी कहते रहो, सिखा सिखा के चले जाना, अगले साल आओगे तो ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे, कुछ फर्क नहीं दिखेगा। क्या कर रहे हो आप? ये सम्यक दर्शन नहीं करना चाहता है, वेद विज्ञान नहीं करना चाहता है, इसे लगता है घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी, फिर लगता है मुझे खाने में आनंद नहीं आएगा, फिर कहता है मेरा घूमना फिरना सब बेकार हो जाएगा मेरा। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, सम्यक दृष्टियों की घर गृहस्थी बिगड़ती नहीं है, उनकी घर गृहस्थी और अधिक व्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि वे मैनेज करना जानते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि बदल गई है, उनका चिंतन बदल गया है, उनका सोचने का नजरिया बदल गया है, दृष्टिकोण बदल गया है, परिस्थितियों को टैकल करना जानते हैं वे, कि परिस्थितियां कर्म के उदय से बनती हैं, परिस्थितियों से प्रभावित तो नहीं होते हैं। वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं, उनका जीवन कितना उत्कृष्ट हो जाता है, कितना निर्मल हो जाता है, जानते हैं आप? हमें खबर ही नहीं है हमारे को। अभी हमने सम्यक दृष्टियों को ऐसा समझ लिया कि कोई सम्यक दृष्टि होता होगा तो वो सम्यक दृष्टि, यदि मान लो घर में कोई भोजन बनेगा, उससे घर में पूछा कि डोसे खाओगे कि बाटी दाल खाओगे, हाँ बना लो कुछ भी, मुझे तो रस है नहीं, ऐसे ऐसे रोता रोता बोलता होगा वो, क्या फर्क पड़ता है? कोई कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है सम्यक दृष्टियों की लाइफ।
सबसे बड़े सम्यक दृष्टि,
हाँ ये तीर्थंकर परमात्मा, ये भगवान, ये सम्यक दृष्टि तो है। चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दर्शन होता है वो क्षायिक सम्यक दर्शन, यदि हो तो वो सिद्ध अवस्था तक कायम रहता है। सम्यक दर्शन माने संवर, ठिकाना भी संवर और निर्जरा। सम्यक दर्शन माने संवर, शुद्धि की उत्पत्ति, और धीरे धीरे जब उसमें वृद्धि होती चली जाती है, आनंद की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं निर्जरा, और जब आनंद की पूर्णता हो जाती है तो उसे कहते हैं मोक्ष। चर्चा करेंगे अपन मोक्ष के बारे में क्या? अभी तो संवर और निर्जरा की चर्चा कर रहे हैं। आश्रव और बंध का विरोधी है संवर और निर्जरा। आश्रव और बंध माने विषयों में आनंद, संवर और निर्जरा माने आत्मा में आनंद। बोलो, विषयों में आनंद आता है तो आत्मा में आनंद नहीं आता, और जिसे आत्मा में आनंद आता है उसे विषयों में आनंद नहीं आता। छूटेगा तब छूटेगा, भूमिका के अनुसार छूटेगा, क्रियाएं भी बदलेगी, परिणाम भी बदलेंगे, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन अंदर में श्रद्धा बदल गई है, अंदर में मान्यता बदल गई है, अभिप्राय बदल गया है, इसे सम्यक दृष्टि कहते हैं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बोली हुई
जिसको आपने कहा कि शायद,
हाँ
उनका वो आश्रव होता है,
होता है, होता है, हाँ संवर भी है और आश्रव भी है। देखो क्या होता है, ये जो संवर हुआ है ना, ये संवर लिमिटेड कर्म का हुआ है। जब संवर एक बार प्रकट हो जाता है ना, उसके बाद में भी कर्म आते रहते हैं। जिस कर्म का संवर हो गया वो तो नहीं आएंगे। जैसे समझ लीजिए, जो हम नाव में जो अपन ने बात की थी ना, नाव में छेद हो गया और जो कर्म आ रहे हैं उसका नाम आश्रव है, छेद को बंद करने का नाम संवर है। अभी प्रैक्टिकल बतलाऊं आपको सही चीज एग्जैक्ट क्या है, आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। उस नाव में छेद आपको एक नहीं करना है, उस नाव में आपको छेद करने हैं 120 बंधन योग्य प्रकृतियां हैं। कर्मों के ज्यादा वेद और करो, वैसे बंधन तो होता नहीं है, 148 कर दो, 148 कर्म प्रकृतियां हैं ना, इतने छेद हैं। अब संवर के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले इतने छेद बंद करने पड़ेंगे। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के, क्योंकि इतनी जगह से कर्म आ रहे हैं, मति ज्ञानावरण कर्म आ रहा है, श्रुति ज्ञानावरण कर्म आ रहा है, अवधि ज्ञानावरण कर्म आ रहा है, मनेपरीय ज्ञानावरण कर्म आ रहा है, केवल ज्ञानावरण कर्म आ रहा है, चक्षु दर्शनावरणी कर्म आ रहा है, अचक्षु दर्शनावरणी कर्म आ रहा है, अवधि दर्शनावरणी कर्म आ रहा है, चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी, अवधि दर्शनावरणी, केवल दर्शनावरणी कर्म आ रहा है। समझ रहे हैं आप? नित्यात्व आ रहा है, अनंतानुबंधी आ रहे हैं, ये सब अलग अलग छेद में से कर्म आ रहे हैं, ऐसा मान लो आप। एग्जाम्पल है ये तो। तो जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, इन सब में से 41 छेद बंद हुए, इतना संवर हो गया। जैसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होता है, उसके 41 कर्म प्रकृतियों का संवर हो जाता है। नित्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रव रुक जाता है, और बाकी सबका, मतलब बाकी सबका तो चालू है, ये भी भूमिका के अनुसार चालू है, धीरे धीरे होता है। तो जो क्षायिक सम्यक्त्व की मैंने बात कही है, क्षायिक सम्यक्त्व हो जाने पर भी नित्यात्व आदि कर्म तो नहीं बंधते, लेकिन बाकी और जो कर्म प्रकृतियां हैं वो उनके जीवन में भी बंधती रहती है। अभी धीरे धीरे भूमिका बढ़ेगी, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे संवर भी और बढ़ेगा, निर्जरा भी और ज्यादा बढ़ेगी, संवर भी पूर्ण हो जाएगा, निर्जरा भी पूर्ण हो जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये धर्म कैसा है ये बोलो, किस तरह का धर्म है ये? लॉजिक, तर्क से, युक्ति से देखो। और कल मैंने कही थी बात, निर्णय करो, किसी और के भरोसे काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि मैं निर्णय करूं और आपके काम आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल इंडिविजुअल है, फैमिली वाइज भी नहीं है क्या महेंद्र भाई, आप निर्णय करो और आपकी पूरी फैमिली में लागू हो जाए, ये ऐसा नहीं चलेगा। ये बिल्कुल ही स्वतंत्र है, ये बिल्कुल पर्सनल चीज है क्या, ये बिल्कुल ऐसा पर्सनल है जैसे आप स्नान करते हैं तो आपका ही स्नान होता है क्या? नहीं, घर में बड़े बुजुर्ग कोई एक नहाले में तो सब नहाए हुए मान ले, ऐसा थोड़ी ना होता है। धर्म ने ऐसा करता है, धर्म ने ऐसा कहता है। अब हमारे घर से ये जा रहे हैं ना सुनने के लिए, चलता है क्या बात कर रहा है, उसका धर्म उसके साथ में, तेरा धर्म तेरे साथ में। ये बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से है, जैसे आप भोजन करते हैं तो आपका पेट भरता है और उनका नहीं। कि मेरे को थोड़ा सा जल्दी है, ऑफिस जाना है, एक काम करो आज मेरी जगह आप खा लेना, पेट मेरा भर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जो खाएगा उसका पेट भरेगा, सबका अपना अपना, भोजन अपना अपना है, भजन भी अपना अपना ही करना चाहिए। भोजन अपना अपना करते हैं तो भजन अपना अपना होना चाहिए, स्वाध्याय अपना अपना होना चाहिए। भाई साहब ये आत्मा की खुराक है, आत्मा की खुराक है, असली खुराक है, इसके बिना नहीं चलता है काम। इसके बिना यदि आप काम चलाना चाहते हो तो चलेगा नहीं। आपने जितनी चीजें इसको छोड़ करके अपनाई है, स्वाध्याय को छोड़ करके जितने पंचेंद्रीय विषय भोगों को अपनाया है, ये तो सब टेम्परेरी है, आत्मा ही साथ रहने वाला है, आप स्वयं आत्मा है, ये सब छूट जाएंगे। कौन सा भोग कितने लंबे समय तक रह सकता है बतलाओ मुझे? आत्मा में ये जीव अनंत काल तक रह सकता है, पंचेंद्रीय विषय भोगों के अंदर एक दिन भी नहीं रह सकता है। स्पर्श इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का विषय, 24 घंटे खा सकते हैं आप कंटिन्यू नॉन स्टॉप, 24 घंटे देख सकते हैं आप टीवी, 24 घंटे सुन सकते हैं आप कुछ, नॉन स्टॉप नहीं चल सकता कहीं भी। और आत्मा में सदा सदा के लिए लीन हो सकते हैं, जो आत्मा में सदा के लिए लीन होते हैं ये परमात्मा बन जाते हैं, ये भगवान बन जाते हैं, ये पूज्य हो जाते हैं, इसलिए हम उनकी पूजन करते हैं। मंदिर क्यों आते हैं भैया? भगवान कुछ नहीं देते तो मंदिर क्यों आते हो? उनको देखते हैं तो पता लगता है इन्होंने क्या काम किया है, उस शेर ने क्या काम कर लिया, बोलो। शेर मत समझो ना उसे विराजमान है क्या? आप उसे शेर देख रहे हो, वो महावीर बन गए हैं, पशु से परमेश्वर बन गए हैं। हमें पशु नहीं देखना है उनको, उनको परमात्मा देखना है। नर से नारायण नहीं बन सकता, पशु से परमेश्वर हो सकता है तो नर से नारायण नहीं हो सकता। वो पूंछ वाला कर सकता है तो मूंछ वाला नहीं कर सकता नहीं कर पाएगा। काम कठिन नहीं है, काम सबसे सरल है, काम बहुत सरल है, बहुत सरल है। एक्चुअल में कभी किया नहीं है ना, इसलिए कठिन लगता है। बिल्कुल सच है, कभी हमने किया नहीं है, कभी हमने आत्मा के बारे में सुना नहीं है, कभी आत्मा का परिचय नहीं हुआ, कभी हमें अपने आप की खबर नहीं लगी, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं, अपने आप को समझा नहीं, अपने आप के बारे में सुना ही नहीं कि ऐसा मेरा स्वरूप है, इसलिए वो थोड़ा अटपटी सी लगती है थोड़ी बातें। सच बात तो ये है, ये बातें कुछ अटपटी नहीं है, ये बातें जीवन है, ये बातें लाइफ है, इससे असली जीवन मिलता है, इससे अनुभूति होती है, इससे आनंद मिलता है। एक बार अपने में समा करके देखो, ऐसा आनंद आएगा जिसकी आपने कभी भी परिकल्पना भी नहीं की होगी। ये मुक्ति का मार्ग है, ये साधना का मार्ग है, व्यवहारिक जीवन सुधारना, आश्रव और बंध को ही कहा ऐसा समझकर व्यवहारिक जीवन में शिथिलता मत लाना, आश्रव और बंध को श्रद्धान में ही ये समझना, संवर और निर्जरा प्रकट करने के लिए प्रयास करना। संवर और निर्जरा जीवन में प्रकट होंगे तो अल्पकाल में मुक्ति की भी प्राप्ति होगी। हम सभी के जीवन में ऐसी मुक्ति की प्राप्ति हो, संवर और निर्जरा हो, आत्मा का आनंद हो, अतिंद्रिय आनंद हो, सभी के जीवन में वो सब शीघ्र से शीघ्र प्रकट हो, इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।
ये स्वरूप समझा बिना काम्यो लू
Thank you.